हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हमारी जो संस्था है इस्कॉन संस्था, इसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की थी 1965 में। वो यहां से अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापन किया था अपनी उम्र के 69वें साल में। लेकिन जब वो बालक थे, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। आज हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी उनके जन्म स्थान पर गए थे कलकत्ता में, वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत ही पवित्र जगह है वो, जहां पर एक परम संत का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहन डे था, शायद उनकी माताजी का नाम रजनी था, इज दैट राइट? तो रजनी देवी और गौर मोहन डे उनके पिताजी का नाम था। कपड़े की दुकान थी उनकी। और प्रभुपाद जी जब बालक थे, उनका नाम अभय था। तो ये अभय जो थे बालक रूप में, रोज सवेरे अपने पिताजी के मंगल आरती के घंटी के आवाज से जगते थे। कितना भाग्य है देखो, कितना सुंदर। अगर आपके घर में बालक हो और अगर आप घर में आरती करते हो और केवल आपके आरती की शंख की आवाज सुनकर अगर बालक जगता हो, परम भाग्यवान बालक है। तो वो रोज घंटी की आवाज शंख की आवाज सुनकर उठते थे और बिस्तर में ऐसे पूरी आरती देखते थे, बिस्तर में ही बैठ के। और फिर उनको माता उठा के लेके जाती थी और उनका तैयारी करती थी। तो गौर मोहनडे जी जो थे वो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी कहते थे, अपने उन्होंने चरित्र में बताया था लिखने के लिए, कि मेरे पिताजी भगवान के शुद्ध भक्त थे, वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और वो जैसे वैदिक समय पे एक रिवाज था कि गृहस्थ जो था, जो गृहस्थ होता है, वो भोजन करने के पहले हर रोज घर के बाहर जाकर आवाज देता है, कोई भूखा है, किसी को खाना है, और जो भी आएगा उसकी आवाज सुनकर उसको घर में बुला के खाना खिलाएगा और फिर स्वयं भोजन करेगा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी आज से करें कितने साल के पहले की बात होगी, 100 साल पहले की बात होगी, 110 साल की बात है पहले, क्योंकि उनका जन्म जो था वो 1896 में था। तो 1901-2 की बात होगी, ये 110 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। प्रभुपाद जी के पिताजी हर रोज घर के बाहर जाकर लोगों को बुलाते थे और उनके घर में हर रोज 2-3-4-5 साधु भोजन किया करते थे। इतना बड़ा आदर्श है कलयुग के होते हुए भी। और वो उनको भोजन करा के संतुष्ट करा के केवल एक ही बात बोलते थे कि मेरे अभय को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। ये बताने के लिए आपको मैंने इतनी सारी कहानी बताई। गौर मोहन डेन जी का एक ही इच्छा थी कि मेरे बालक के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे, मिलती रहे, बनी रहे, और यही उसके जीवन का नींव है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी जो प्रभुपाद जी के गुरु बने आगे जाकर, उनके पास भी लोग आते थे तो कोई कहता था मैं भगवान का भक्त हूं, तो वो तुरंत कहते थे मैं बिजी हूं, अभी आप बाद में आइए। और कोई कहता था कि मैं भगवान के दासों का दास हूं, तुरंत उसके लिए समय देते थे। तो यही बात है इसके अंदर, राधा रानी भगवान की सबसे परम भक्त है। राधा रानी भक्ति का स्रोत है, भक्ति का उगम है। बिना राधा रानी की कृपा से कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता है, कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, भगवान का अनुग्रह, भगवान का फेवर, अनुकूलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी का यही उद्देश्य था कि मेरे बेटे के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे, क्योंकि राधा रानी जब कृपा करती है तब कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस राधा रानी के ही भजन के रूप में आप जब प्रभुपाद जी जब यहां से अमेरिका गए तो बोट पर थे, वो 40 दिन बहुत कष्ट पाया उन्होंने, दो हार्ट अटैक आया उनको बोट पे, और बोट पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई आईसीयू नहीं था, कोई स्ट्रेप्टोकोकाइनेस नहीं था, कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई डीसी शॉक नहीं था, कोई मॉर्फिन नहीं था, कुछ नहीं था उधर, केवल सहा उन्होंने दर्द वो। अभी हमारे राधा वल्लभ मंदिर के गोसाई अभी आईसीयू में है दिल्ली में, उनको भी हार्ट अटैक आया, इतना दर्द में उनको भगाया यहां से दिल्ली रात को 2 बजे और बचा लिया उनको। ऐसे दो हार्ट अटैक प्रभुपाद जी को बोर्ड पर आए, और बाद में उन्होंने कविता लिखा कि आपके हाथ में मैं कठपुतली की तरह हूं, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मैं चाह सकते हो, और जब राधा रानी की कृपा होगी तब सब काम सिद्ध होगा। ऐसे उन्होंने कविता, लंबी कविता लिखी है, मार्कीने भागवत धर्म बोलते हैं उसको, और उसमें वो कहते हैं कि जब राधा रानी की इच्छा होगी तो सब कुछ सफल हो जाएगा। हमारे जीवन का भी यही स्थिति है, ये मत समझना कि ये केवल प्रभुपाद के लिए सत्य था, हम सबके जीवन में अगर हम समझते हैं कि हमको इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसका सीधा सरल और शॉर्टकट क्या है, राधा रानी की कृपा प्राप्त करना, क्योंकि उससे उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी आसानी से उनकी कृपा हमको मिल सकती है। भगवान का भक्त, परम भक्त राधा रानी है, बिना भगवान के भक्त की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए भक्तों का अनुग्रह मिलना चाहिए, और भक्तों का अनुग्रह मतलब राधा रानी की कृपा, वो प्राप्त होनी चाहिए। तो ये राधा रानी यहां निवास करती है और हम यहां पर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पूरे ब्रज में जहां पर भी जाएंगे, ये पूरा ब्रज जो है ना, ये बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी ने अपने शरीर को विस्तारित किया है, इसलिए हम मथुरा उतरते पहले दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम बलराम जी के शरीर पर चल रहे हैं, जैसे यहां पर ब्रह्मा जी के शरीर पर चढ़ के जा रहे हैं पर्वत पर, वैसे ब्रज जो है, ये भूमि आप यहां बैठे हैं, ये बलराम जी का शरीर है, बलराम जी का शरीर ये भूमि है, फिर भूमि देवी का भी इसमें हिस्सा है, वो भी अपना सहभाग देती है भगवान को चलने के लिए, फिर बलराम जी भगवान का वस्त्र बने हैं, बलराम जी भगवान का बिस्तर बने हैं, भगवान का मुरली बलराम जी बने हैं, बलराम भगवान का मोर मुकुट, भगवान जो भी पहनते हैं, जो भी यूज करते हैं, जो भी उनका घर है, सब कुछ बलराम जी बने हुए हैं छान तरस में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी कृपा के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता है, भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए बलराम जी विस्तार बने हुए हैं यहां पर, और फिर कृष्ण लीला करते हैं उसके ऊपर। तो ये राधा रानी ने, ये जो पूरा वृंदावन धाम है उसका अंतरंग हिस्सा मैंने पहले भी आपको बताया, ये बरसाना धाम है, और यहां पर पवित्रता बनाए रखने के लिए, यहां की लीलाओं की उत्कटता तीव्रता बनाए रखने के लिए उन्होंने इस भाग को चुना, और बाकी सब जगह भगवान ने गौचारण किया है, राक्षसों का वध किया है, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लीला की है, लेकिन अंतरंग जो हृदय की लीला है वो यहां पर प्रकट किया है, और उसकी शुद्धि बनाए रखने के लिए उन्होंने राक्षसों को बड़ी ही चतुराई से यहां पर दूर रखा है। उसकी संक्षेप में कथा ऐसी है कि भगवान ने बहुत सारा लीला किया और गिरिराज को भी उठाया है ना, तो गिरिराज जी को उठाने के बाद सब भी ब्रजवासी बहुत अचंभित हो गए थे, अरे क्या बालक है, छोटा सा बालक था तो इतनी 12 मील लंबी पुतना का वध कर दिया उसने, इतना बड़ा दृढ़ावर्त आया, आकाश में ले गया उड़ाकर उसको, तूफान के साथ उसको पटक के मार दिया, एक राक्षस बैलगाड़ी बनकर आया उसको तोड़ दिया, अभी गिरिराज को उठाया 7 साल की उम्र में, वो भी बाएं हाथ की छोटी उंगली में इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठाया, तो कितने योजन लंबा था वो, हनुमान जी भी पार नहीं कर सके उसको। तो आप, मैंने कल बताया ना आपको कि नंद बैठक हर जगह पर है, वहां पर मीटिंग स्पॉट है उनका, सब ब्रजवासी लोग आते हैं वहां बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कल क्या हुआ, कौन सा राक्षस आया, गज में क्या घटना हुई, क्या करना चाहिए, सब बड़े प्रेम से भगवान को केंद्र स्थान में रखकर उनके विषय में सब ग्वाल बाल चर्चा करते रहते। तो गिरिराज जी को उठाने के बाद जब लीला समाप्त हुई तो सब ग्वाल बाल एकत्र हुए, उन्होंने कहा नंद, हे नंद, तुम्हारा बालक जो है वो बहुत अद्भुत है, पता नहीं कोई तपस्वी होगा पिछले जन्म का, बहुत तपस्या किया होगा, बहुत भयंकर बल प्राप्त किया होगा। देखो सात दिन सात रात इतना भयंकर पहाड़ जो है उठा के रखा। हम सोच रहे थे कि हम उठा रहे थे, हम डंडा लगाकर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसने वो टेढ़ा करके मालूम पड़ा कि हम नहीं उठा रहे, वही उठा रहे। हो सकता है वो देवता होगा, कोई देवत लोक से आया होगा नीचे, कोई सिद्ध पुरुष होगा, कोई महात्मा होगा। नंद बाबा तुमने तो बहुत पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा, ऐसा सुंदर बालक तुमको प्राप्त हुआ, तो ऐसा गौरव कर रहे हैं नंद बाबा के अद्भुत बालक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नंद बाबा बहुत सरल हृदय के हैं। अभी ऐसा है कि नंद बाबा को वसुदेव जी ने एक संदेश भेज दिया था कि जब कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद नामकरण विधि जब होगा ना, तो उसको पब्लिक में मत करना, क्योंकि आपके बेटे को संकट है। है तो उनका ही बेटा, लेकिन नंद महाराज को पता नहीं है, इसलिए वो कह रहे कि आपका बालक को बहुत संकट है, इसलिए आप उनका नामकरण विधि जो है वो पब्लिक में मत करना, गौशाला के अंदर गुप्त रूप में करना, क्योंकि उसको पता था कि मैंने ही बालक को वहां जाके रखा है और वहां कंस बार बार तकलीफ करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता था कि यहां से राक्षस जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि शांति से काम करना। और गर्गाचार्य को भेज दिया गर्गमुनि को, और गर्गमुनि ने उनका नामकरण विधि गौशाला में एकदम गुप्त रूप में किया, किसी को बुलाया नहीं, केवल नंद बाबा यशोदा और घर के जितने लोग थे उतने ही बिठा के उसका नामकरण विधि किया, जातक कर्म किया, जातक बनाया, कुंडली बनाई, उसका डिस्कस किया, सब कुछ हो गया एकदम प्राइवेट में गौशाला के अंदर। तो नंद बाबा को पता था कि ये बात बहुत गोपनीय है, इसको सीक्रेट रखना है, लेकिन जब सात साल के बाद में जब ये गौरव हो रहा था तो अचानक नंद बाबा बोल पड़े। क्या बोल पड़े? अरे हाँ, गर्गमुनि ने तो कहा था कि आगे जाके ये पर्वत उठाएगा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, एकदम निष्पाप भाव से बताया उन्होंने कि ये सब गर्गमुनि ने जन्म के समय बताया था कि ये ऐसे ऐसे करने वाला है, इसलिए इसका नाम गिरधारी भी होगा। ऐसे उन्होंने जन्म समय भी बताया था आगे जाकर क्या क्या करने वाला है बालक। यही पिछले जन्म में राम भी था, यही नरसिंह था, यही वामन था, और आगे जाकर भी और लीला करेगा, ये ब्रह्मांड का नायक है, ये सब कुछ गर्गमुनि ने बताया था। इसलिए इतनी आश्चर्य की बात नहीं है जितना आपको हो रहा है, क्योंकि मुझे ये पता था। तो जैसे ही सुना तो ब्रजवासियों ने एकदम गुस्सा हो गए, लाल हो गए, वो क्या गर्गमुनि आए थे नामकरण विधि करने के लिए और तुमने हमको बुलाया नहीं उसके लिए? इतने बिरादरी के समझते हो, अपने आप को भाई समझते हो, और हमको ये बताया भी नहीं कि गर्गमुनि आकर उन्होंने नामकरण विधि किया, हमसे इस छुपाया आपने। सब लोग एकदम आग बबूले हो गए और उन्होंने कहा कि इस नंद को हमारे जाति से हद पार कर दो। देखो एकदम गौरव कर रहे थे, प्रेम से गौरव कर रहे, अचानक मूड बदले हो गया मीटिंग का, एकदम सब गुस्सा हो गए। तो सब लोग बोलने लगे नंद को जाति से हटा दो, हद पार कर दो, रस्टिकेट हिम। तो वृषभानु महाराज भी उस सभा में थे, और वृषभानु महाराज नंद महाराज के बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा, रही सब मिलकर एकजुट होकर नंद महाराज को जाति से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो खड़े हो गए, पर देखो ऐसा मत करो, उनकी मजबूरी थी, समझने का प्रयास करो, उनका प्रसंग क्या था, उस समय क्या स्थिति थी, कृष्ण को खतरा था, इसलिए मजबूरी से आपको, आप पर प्रेम होते हुए, आपको बुलाने की तीव्र इच्छा होते हुए भी उन्होंने अपने दिल को संभाला, दिल में पत्थर रखे, किसी को नहीं बुलाया और प्राइवेट नामकरण विधि किया। आप थोड़ा समझने का प्रयास करो, इतना कोशिश करो कि आप इन पर गुस्सा करके अन्याय मत करो। तो वो उन पर भी गुस्सा हो गए, अरे तुम उसका पक्ष लेते हो, इसको भी हद पार कर दो, क्योंकि हम जिसको हद पार करने का बात कर रहे तुम उसका पक्ष लेके उसका क्या करते हो, वकालत कर रहे हो, इसको भी निकाल दो। तो कुछ ग्वाल बाल खड़े होके बोले अरे इसके बारे में ऐसे मत बोलना, ये वृषभानु जी है, पता है इनकी कन्या कितनी महाप्रतापी है, अरे इनकी कन्या है इसलिए नंदगांव में बरसाने में कोई राक्षस नहीं आता है। बोला अच्छा ये क्या बात है, बताओ उसका रहस्य क्या है। और इसकी कन्या जो है महाप्रतापी है, महाप्रतापी मतलब वेरी वेरी शिवलरस, बहुत शक्तिशाली। बोले कैसे? इसी की वजह से नंदगांव बरसाने में राक्षस नहीं आता है। बोले क्या घटना क्या हुई? बोले कि जब भी हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर नंदगांव में हम लोग आए ना, गोकुल से शिफ्ट किया, हमने कल बताया ना आपको, कुछ समय बाद शिफ्ट किया उन्होंने, गोकुल से नंदगांव आए और रावल से बसाने बस गए दोबारा कंस के आतंक की वजह से। तब जाकर कंस ने दूसरे दिन भी भेजा था राक्षस को मारने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं कोई लोग वहां पर, सब गांव खाली था, गोकुल पूरा शिफ्ट हो गया था, कोई ब्रजवासी नहीं मिला, कोई नंद बाबा नहीं मिले, कोई यशोदा नहीं मिली, कोई नहीं मिले। तो वो कंस जरा आश्चर्य में हो गए, कहां गए सब लोग। तो वो उन्होंने अपने सेनापति को भेजा हाउ और गुलाऊ और उसके दो पुत्र, चार लोग गए और आगे 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 ढूंढे 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 गए तो सीधे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में देखा तो यही बालक जो है जिसकी खोज में हम लोग घूम रहे हैं, वो बलराम जी और कृष्ण भगवान सब बालकों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। तो तुरंत उनको पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने मारने के लिए, और जैसे ही हाउ बुलाऊ दो बालकों ने उनको स्पर्श किया, क्या हो गया, पत्थर बन गए वो, अचानक पत्थर बन गए। और बहुत भयंकर शरीर था उनका, वो शरीर का पत्थर बन गए तो एकदम भयंकर आकृति के पत्थर बन गए वो, मतलब ऐसे बहुत भयंकर आकृति पैदा हुई पत्थर की। और वो पत्थर के चार आकृतियों का उपयोग यशोदा माता ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। कैसे किया, जब कृष्ण भगवान बहुत शरारत करते थे तो वो उनको डर दिखाते थे, देखो हाउ बुलाऊ आएगा, वो डर दिखा के उनको भगाते थे। वो जैसे कि बहुत खेल रहे हैं हम जो बहुत देर तक खेल खेल रहे हैं और वो टाइम हो गया खाना खाने का दोपहर में, क्योंकि बाल लीला के अंदर जब वो छोटी छोटी बछड़ों का देखभाल करते थे ना, तो उनको कभी कभी लंच के लिए घर में बुलाते थे दोपहर के लिए। फिर बड़ी गाय को प्राप्त करने के बाद दूर दूर जाते थे, छोटी गाय जब थी कभी घर पे बुलाते थे तो वो रोहिणी पहले आती थी बुलाने के लिए, चलो प्रसाद का टाइम हो गया है, तो ये कहां सुन रहे, तो इतना मग्न है खेलने के तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कि आप कौन बुला रहे हैं। तो रेणी दीदी कहते हैं यशोदा दीदी अभी तुमको आना पड़ेगा, तो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो यशोदा आके उनको डांटती थी, ऐसे शरारती लड़के हो, हाँ यू आर लाइक स्ट्रीट बॉयज, जैसे रस्ते पे घूमने वाले गंदे लड़के हो आप, तुम्हारे बाबा कितनी देर से घर में आके बैठे इंतजार कर रहे, चलो हाँ हाँ माता आ रहे आ रहे। वे तब वो खेल हार रहे हैं ना उधर, तो बालक कह रहे हैं कि अभी हारने के समय पे बोल रहे जा रहे हैं जा रहे हैं, हाँ कल आपको खेलने में नहीं लेंगे हम, क्योंकि अब जब हार रहे हो तो माता का बहाना करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ग्वाल बाल डांटते उनको कि आपको कल खेल में नहीं लेंगे, तो सबसे बड़ी धमकी है वो। अरे अरिष्टासुर भी आ गया, किसी भी आ गया तो डरते नहीं वो, लेकिन जब ग्वाल बाल बोलते हैं कि कल आपको खेलने में नहीं लेंगे तो वो डरते हो। आप समझ सकते कितना प्रेम है उनको, और दोबारा खेलने लगते हैं। यशोदा कहती है अभी नहीं आओगे, देखो हाउ बुलाऊ आ रहे हैं। तो देख के फिर पीछे देखो पीछे से हाउ आ रहे हैं, तो बिना पीछे देखे वो कृष्ण बलराम भाग गए। ऐसे उन्होंने उनका इस्तेमाल किया उन बड़े बड़े आकृतियों का। दुर्भाग्य से वो आकृतियां अभी तक थी, हमने देखा दर्शन किया था उनका, लेकिन वो चोरी चले गए, अभी एक ही बचा है उधर। एनीवेज कलयुग का प्रभाव है सब, क्या करें। तो जब ये हाउ बुलाऊ और उनके बच्चे जब पत्थर बन गए, तो कंस का क्या दुर्भाग्य था, जिसको भेजता था वापस लौट के नहीं आता था ये उसका बैड लक था, को रिपोर्ट मिलता नहीं था क्या हुआ क्या भाई वापस क्यों नहीं आ रहे, एक ही मिलता रिपोर्ट मिलता था डेथ रिपोर्ट कि मर गया वो, कैसे मर गया किसने मारा, वही बालक मारता है उनको बार बार, छोटा सा बालक वो गेंद खेलता है फिर भी उनको आगे मार देता है। कितने बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त करने वाले, रूप बदलने वाले, पहाड़ जैसे आकार वाले, आकाश में उड़ने वाले, हाँ तिनका लेकर उसको अभिमंत्रित करके तिनका के साथ में बैठ के उड़ के उड़ने वाले इतने भयंकर राक्षस थे, इतना सा बालक उनको मारता था हमेशा। तो सुंदर औरत बन के आई थी वो भी इतना दर्द में दर्द में दर्द में अपना सुंदर रूप टिका नहीं सकी, वो बहुत सुंदर औरत बन के आई थी जैसे कि देवता की कोई पत्नी हो, सब ग्वाल बालिनी भी जो मोहित हो गई थी उनका सुंदर देख के, लेकिन इतना दर्द दिया भगवान ने उसको कि वो अपना सुंदर रूप टिका नहीं पाई, 12 मील का ओरिजिनल रूप उसका पैदा हो गया। हाँ जिसके स्तन जो थे वो पहाड़ के समान थे, उस पहाड़ के ऊपर वो कृष्ण भगवान खेल रहे थे, तो परेशान हो गया वो, कोई वापस से नहीं आ रहा है, सेनापति भी गया वो भी वापस नहीं आया। तो ये खुद आए महाराज जी, कंस महाराज जी आपको थोड़ा बताना जरूरी है, कंस का क्या गौरव था। हम लोग क्या सुनते हैं, अरे कंस महाराज को तो भगवान ने ऐसा एक मुक्का मारा तो मर गया वो, मतलब कोई होगा कमजोर आदमी, हाँ इतना सा 7 साल का बालक किसी को मुक्का मारेगा तो मर गया, मतलब कितना कमजोर होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की ये जो कंस की महानता जो है वो बताने को सुखदेव महाराज को समय में नहीं मिला, क्योंकि परीक्षित महाराज को कल 7 दिन थे, तो कंस का गौरव करते बैठे बैठेंगे कि कृष्ण लीला बताएंगे, लेकिन गर्ग संहिता में गर्ग महाराज ने बताया पूरा कि कंस ने कैसे पटक पटक के राक्षसों को परास्त कर दिया था, जगह जगह जाके उसने सब राक्षसों को आह्वान दिया था, कम ऑन फाइट विद मी, और सभी ये तृणावर्ता और ये बकासुर, ये अघासुर, ये केशी, अरिष्टासुर, तृणावर्ता, शक्टासुर, ये सबको उसने कई दिनों तक युद्ध करके एकदम परास्त कर दिया। सब लोग शरण आ गए थे उसके कि भाई बस आगे मत मारो, हम आपको जो करना है करेंगे, मतलब मेरे दोस्त बनो और हर साल टैक्स पेमेंट किया करो मुझे। इस तरह से दुनिया भर के राक्षसों को उसने परास्त करके अपने वश में करके रखा था। इतना भयंकर वो चक्रवर्ती सम्राट था, इतना शक्तिशाली था वो, और अपने भाई बहन की शादी के समय अपने पिता को उसने अरेस्ट कर लिया था, वो जेल में डाल दिया था, ऐसा इतना बलशाली था वो। कई साल तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी उसने, बहुत सारी, बहुत पावरफुल था वो। तलवार का डर से देवता भी कांपते थे, उसकी भवें उठाने से देवता वहां कतर कांपते थे, सब देवताओं को उसने परास्त कर दिया था, इतना पराक्रमी था वो। और अपने पिता को युद्ध में बहन की शादी के समय अपनी सेना के साथ शादी के मंडप में परास्त करके उसको अरेस्ट करके उसने जेल में डाल दिया था और खुद राजा बन गया। और सब लोग डर के मारे, राक्षस लोग उसको टैक्स पे करते थे, ब्रजवासी लोग यहां से मक्खन बेचकर उसका टैक्स वहां पर पेमेंट करने के लिए जाते थे। वो कंस स्वयं आया भाई बात क्या देखने के लिए। और जब से ही, जैसे ही कंस इस एरिया के बॉर्डर में आया, कौन से एरिया याद रखना, बरसाना, नंदगांव और जावट, ये बहुत अंतरंग स्थान है वृंदावन का। जैसे ही इसके बॉर्डर में उसने प्रवेश किया, अपना कदम रखा, तो बहुत अद्भुत घटना हुई। किसी को पता है क्या हुआ? हमारे कंस महाराज कन्या बन गए, स्त्री बन गए। हाँ, राजा बनकर ऐसे आए थे और अचानक देखा, अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो जब मैं कथा कर रहा हूँ, कथा करते थे, अचानक मैं स्त्री बन गया तो मेरी कैसी अवस्था होगी, हाउ मच एम्बेरसमेंट, इतना संकोच होगा मुझे। हाँ, वो तो बेचारा बड़ी बड़ी मूछे बीचे लेकर आया था, सब मूछ भी गायब हो गई, एकदम गोपी बन गया वो। अभी उसको इतना संकोच हुआ, इतना संकोच हुआ, और ये सब जो संकोच हुआ ना, ये सब गोपियों के ध्यान में आया, और गोपियां उनको देखकर तालियां बजाने लगी, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बड़ा राक्षस बनते हो, बड़ा राजा बनते हो, यहाँ बार बार राक्षस को भेजते हो, अच्छा हो गया, तालियां पिट ले सब लोग। उसको देख के और दुख हुआ उसको, और सब गोपियों ने मिलकर इस कंस को, तभी वो कंस नहीं था, कंसनी गोपी बन गई थी उसकी, बहुत सुंदर। उस कंसनी गोपी को उन्होंने 6 महीने तक कंडे दुआए उसके हाथ से, गोबर के कंडे, मतलब गोबर को गिरने के बाद इकट्ठा करना, मट्टी से मिलाकर उसके केक बनाना, उसको पेड़ पर टीले पर उसको सुखाना, शाम को सूखने के बाद इकट्ठा करना, टोकरी में डालना, सर पे रखना और घर पे छोड़ देना, फिर घर जाके फिर गाय के पांव धोना, गौशाला साफ करना, ऐसे बढ़िया बढ़िया काम कराए उससे। अभी हम तुम अगर होंगे ना, हमको अगर ब्रज में अगर गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ, राधा रानी के धाम में अगर ऐसा कोई सेवा मिलेगा तो अपने आप को धन्य मानेंगे हम। लेकिन कंस का भाव क्या था? राक्षसी भाव था उसका, इसलिए इतनी बड़ी कृपा होने पर भी वो अपने आप को कोस रहा था, कितना दुर्भागी हूं मैं, इतना बड़ा सम्राट होने पर भी मुझे कन्या बनना पड़ रहा है, हाथ जोड़कर रो रहा था वो, प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मेरा सर्जरी करो, सर्जरी, और मुझे वापस से आदमी बना दो। लेकिन वो तालियां पिटकर हंसी रहती थी उनको, और सब काम करवा के लिए उससे उन्होंने, तो 6 महीना ये आदमी रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया राजा था, और क्या होगी उसकी अवस्था, बहुत दयनीय अवस्था हो गई थी। 6 महीने के बाद वो बहुत ही रोया, तो सखियों को फिर दया आ गई, गोपियों को, अरे बेचारा भी तो इतना पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है, वादा कर रहा है दोबारा नहीं आऊंगा, कुछ क्यों नहीं भेजूंगा मैं, कुछ भी आतंक नहीं करूंगा मैं, वादा करता हूं मुझे इससे मुक्त करो, इस अवस्था से। तो क्या हुआ, सब गोपियों को राधा रानी के पास ले गई, तो राधा रानी विश्वानु महाराज की उंगली पकड़ के ऐसे चल रही थी, तो उनके पास लेके आते हैं, तो कंस महाराज जो है ना, कंसनी गोपी उनके चरणों में गिर जाती है, तो ऋषभान महाराज को दया आती, अरे बेचारे कंस महाराज, हम इनको टैक्स पेमेंट करते हैं, उनके डर के मारे हर साल में अपना इकट्ठा करके जाते हैं, टैक्स पेमेंट करके आते हैं, आज मेरे लड़की के सामने वो कह रहे हैं हमारी महारानी है वो, हाँ श्री जी महारानी, वही कुछ कर सकती है आपको, उनके चरणों में कर रहे, तो उनको दया आ गई, बोले श्री जी माफ कर दो इनको, चलो कोई बात नहीं, वो दोबारा नहीं करेंगे, बहुत रो रहे बेचारे। तो राधा रानी ऐसे उंगली करके बताया, छोटी सी राधा रानी, हाँ दोबारा आओगे ना तो परमानेंट कन्या बनोगे। चेतावनी दे रही हूँ, अगली बार यहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कोई आदमी दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर। जैसे कभी कभी अपने मुंबई में गुंडा लोग ऐसे बोलते ना, दिखना नहीं चाहिए वापस यहाँ पर, हाँ नाम शेष कर दूंगा उसको। तो राधारानी ने कंस को धमकी दिया कि अभी माफ कर देती हूँ, ये मेरा किशोरी कुंड है, यहाँ पर छलांग लगाओ, दोबारा शरीर प्राप्त करोगे पुरुष का, और लौट के नहीं आना, किसी को भी यहां भेजना नहीं। तो कंस ने बिल्कुल उस आज्ञा को तुरंत सर पे रखते हुए तुरंत छलांग लगाया किशोरी कुंड में, और पुरुष बन गया, और वैसे ही भाग गया मथुरा तक, पीछे मुड़के भी नहीं देखा। क्यों, कहीं विचार बदल गया तो? हाँ, कहीं महारानी का विचार बदल गया? नहीं नहीं, कैंसिल करो उसका वरदान जो है, उसको कन्या रहने दो। इसलिए जो लड़का बन के पुरुष बन के भागा सीधा मथुरा तक, पता नहीं कितना किलोमीटर भागा हो, लेकिन बहुत शक्ति थी उसके अंदर, भाग गया हो, दोबारा लौट के नहीं आया हो, ना कोई राक्षस को भेजा उसने। तो ये कथा कौन बता रहे हैं? वृषभानु महाराज के लिए चार पांच गोप खड़े होकर बोल रहे हैं, इनको तो बोलना मैंने, इनकी कन्या की वजह से अभी हमारा शांति चल रहा है यहाँ पर, इनकी कन्या महाप्रतापी है। तो ये सब क्यों किया राधा रानी ने? ये अपने धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया उन्होंने, ताकि यहाँ पर, क्योंकि दिन भर गौचारण करते थे भगवान, तो दिन में कोई राक्षस आ रहा है उनकी लीला में भंग कर रहा है, खंड पड़ आ रहा है उसके अंदर, राक्षस को मारना पड़ रहा है, फिर वो डरवाना डरावना माहौल, फिर वो चिंता का एंजाइटी, उनको यहाँ पर नहीं चाहिए था। तो कौन सी लीला करने के लिए, किस टाइप की लीला करने के लिए राधा रानी ने ये सब लीला करके कंस को भगा दिया, एकाध तो बताने का प्रयास करूंगा आपको कि किस प्रकार की लीला यहाँ होती है। तो आपको यकीन होगा कि ऐसी लीला अगर वहां पर होनी है और करवानी है तो फिर ये कंस का आतंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो एक लीला ऐसी है कि राधा रानी और गोपियां जब यहाँ पर मिलती है कृष्ण भगवान को, तो हमारे कृष्ण कैसे है? चौर अग्रगण्य शिरोमणि, मतलब क्या है? चोरों के सबसे सरताज है वो, पूरे ब्रज के एकदम उनका डबल ट्रिपल पीएचडी किया उन्होंने चोरी करने में, ऐसा चोरी करते हैं कि समझ में नहीं आता है। उनको मिलने जाएंगे, गोपियां बात कर रही है उनसे, तो अचानक उनका यहाँ का मणि गायब, यहाँ का मणि गायब, यहाँ का एक कुंडल गायब। तो रोज गोपियों की माता कहते सुबह आपको इतना श्रृंगार करके भेजते हैं तो हमेशा श्रृंगार अधूरा होता है वापस आते कभी, तो क्या करें हम, बात करते रहते हैं उनसे और पता नहीं कब हमारे अलंकार गायब होते हैं। कभी कभी हम उनके जेब में हाथ डालते तो कुछ कुछ मिल जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि अरे क्या है ना कि मुझे समझ में आता नहीं, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे हाथ कैसे घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या उठाते हैं और कहाँ रखते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ले लो आप, अगर आपका सिर का और गाल का और कान का कोई अलंकार मेरे जेब में हो वो आपका ही है, ले लो, आप ले सकते हो। तो रोज की शरारते सब गोपियां परेशान हो गई थी, रोज का उनका कुछ ना कुछ चोरी करना, मक्खन तो चुराते थे लेकिन गोपियों को हमेशा उनके अलंकार चुरा कर परेशान करते थे। तो सब गोपियों ने सोचा कि एक बार ऐसे ऐसा करेंगे हम लोग, ऐसा सबक सिखाएंगे भगवान को, मतलब कृष्ण को, श्याम सुंदर को, कि याद रखेगा वो भी। तो फिर वो एक प्लान बनाते हैं बढ़िया सा, बहुत जो है अच्छा अच्छा मिठाई बनाते हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय है, घर से अपने हाथ से बना के लेते हैं सब गोपियां, और कभी रोज के रोज उनकी नोक झोंक शरारत तो वाद विवाद होता था, उस दिन कुछ वाद विवाद नहीं, आते ही भगवान को बोलो बैठो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया माल लेके आए, बैठो। सब गोपियां अपने हाथ से परस रही है, ये लो ये देखो, उसका वर्णन कर रही है, ये ऐसे बनाए, इस चीज का बनाए, ऐसे ऐसे मथुर होता है, इसको खाओ करके बहुत सारा खिलाया उनको खाना। और उसके बाद में बोला और खाओ, तो ये बहुत बड़ा पेट हो गया उनका, बहुत पेट भर गया, और जगह नहीं है तो फिर थोड़ा सा लुढ़क गए ऐसे, आधा हाथ लेके आधा लेट गए, और फिर खा रहे हैं, फिर लेट गए, बोले और खाओ, फिर लेटते लेटते खा गए, लेटते लेटते भी खा रहे और खाते खाते सो गए, इतना खाया कि उधर ही खाते 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 ही ढीले हो गए, ढेर हो गए, खाते रहे और सो गए उधर। जब बहुत गहरी नींद में सो गए तो फिर गोपियों ने सारे उनके अलंकार उतार दिए, सारा चीज, हाँ इधर जो सोने की जंजीर लगाई है उसको मोरपंख लगाया उसको निकाल दिया, गले में जितना था, कान में था, यहाँ पर मणि था, यहाँ मणि था, इधर भी मणि था, गजराज ने दिया था, किसी ने दिया था, सब सब कुछ जितना भी श्रृंगार था उनका, गले की मालाएं, बाजूबंद, कलाईबंद, अंगूठियां, कमर पट्टा, और उनकी माता जो थी यशोदा मैया वो बहुत कस कस के उनके पायल बांधती थी, क्योंकि नटराज है ना कृष्ण भगवान, जब नृत्य करते कभी तो दो दो तीन तीन मील पायल उड़ जाती है, तो बांध के गए थे तीन, लेके आए एक, दो गए जंगल में, तो इस प्रकार की अवस्था थी, वो बहुत कसके बांधी थी ताकि वो पहने हुए अलंकार सब लौट के वापस लेके आएगा घर पे। तो ये गोपियों ने छुड़ाया सब कुछ, सब कुछ छुड़ा के बंसुरी भी चोरी कर ली और सब लोग भागे। बहुत देर के बाद में जब खाए हुए भोजन का असर कम हो गया तब ये होश में आ गए। होश में आ देखे जंगल में अकेले पड़े, कोई नहीं है, ना खिलाने वाले हैं, ना खाना है, ना कुछ नहीं, और वो देखते अरे ये सब गायब है, एवरीथिंग लॉस्ट। तो अंतर्यामी वो ठाकुर जी महाराज, बोले अच्छा गोपियों की चाल है, कोई बात नहीं, हम भी कुछ कम नहीं, हम भी सबक सिखाएंगे उनको। घर पे लौट के आए तो मैया बोलती है अरे कहाँ गए अलंकार तुम्हारे सब कुछ, कभी कभी तो पायल ही खो के आते हो, आज तो सब सब कुछ खो के आए हो। बोले मैया चिंता मत करना, लौटा दूंगा दो दिन के अंदर, डोंट वरी, सब लौट के आएगा, डोंट वरी, ये समय समय की बात है, आज नहीं है कल लौट के आएगा। तो फिर अगले दिन एक बहुत सुंदर कन्या उनके पास में आती, बहुत लंबा घूंघट मार के आती और पूछती है मैया जाऊं मैं, अरे आवाज तो पहचान के लगती है। बोले कौन हो तुम? बोले मैं नई नई ब्याही बहू हूं, मेरा नाम श्यामा गोपी है। अच्छा कहां से आ रही हो? बोले पास के गांव से आ रही हूं। ऐसा बहुत संवाद करते हैं और तुरंत घूंघट उठाते हैं। बोले माता मैं हूं कृष्ण भगवान, जो है श्यामा गोपी बनकर सज धज कर घूंघट मार के तैयार है। बोले कहां जा रहे हो? बोले आज बरसाने जाने का दिल कर रहा है इसलिए सखी बन के जा रहा हूं। चले जाते, जैसे ही बरसाने के बॉर्डर में पहुंचते हैं श्याम करके पुकारते हैं, बेहोश गिर जाते। सखिया भागवा क्या थे, अरे कोई नई नई बहू आई है, नई गोपी आई है, पता नहीं कितना प्रेम है कृष्ण से, नाम लेते ही बेहोश हो रही है, कितना प्रेम है। हाँ गोपियों के मन में ईर्ष्या नहीं है कि हमसे अधिक कोई प्रेम करता है कृष्ण भगवान से, तो हवा देती है उनको, पानी डालती है, होश में आ जाती है। फिर कुछ देर उसको हाथ पैर करके चलाते हैं, कुछ देर के बाद फिर कन्हैया फिर गिर जाती है। अरे कितना प्रेम है, और सखियां इकट्ठा हो जाती है, संख्या बढ़ रही है। अरे काय कौन सी नई भाई बहू है, पता नहीं कौन सी गांव से आई है, कितना प्रेम है शाम के लिए, नाम पुकारते ही बेहोश हो रही है। ऐसे करते करते कई बार पुकारती है वो, कई बार बेहोश हो जाती है, उतनी संख्या जो है गोपियों की बढ़ती जाती है, बहुत संख्या बढ़ती है। सब लोग बोलते हैं अरे पता है दूर से एक सखी आई है, नई नई भाई बहू है, इतना शर्मिंदा शर्मीली है, इतना नाम पुकारती बेहोश हो रही है, पता नहीं कैसे बचाए उसको, मैंने बहुत बार कोशिश किया, कैसे मजबूरी से अभी बहुत मुश्किल से होश में आ रही है, ऐसे करके पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। बहुत देर बाद उनको ध्यान में आता है कि अभी क्या कर रहे क्या, उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक बार पुकारती है कन्हैया शाम, बेहोश हो जाती है। तो सोचते हैं कि अभी क्या करें, तो राधा रानी के पास लेके जाना चाहिए, वो कुछ उपाय करेंगे उसके लिए। तो फिर उठाकर राधा रानी के पास लेके जाते हैं, राधा को देखते हैं बोलते श्याम गिरिधारी, वापस बेहोश हो जाती है। और इस बार वो हवा देते हैं, जल छिड़कते हैं, क्या क्या करते हैं उसके लिए, लेकिन वो होश भी नहीं आ रही है। फिर रुई का टुकड़ा लेते हैं, रुई का टुकड़ा नाक के पास पकड़ते हैं, और रुई का टुकड़ा हिल भी नहीं रहा है, श्वास भी नहीं चल रहा है, निश्चेष्ट होकर ऐसे मृत हो गई है, ऐसे पड़ी हुई है। ललिता विशाखा सारे सखियां जो है हजारों संख्या में खड़े डिस्कस करें कैसे करें, अभी तो मर जाएगी, अभी इसने विरह की अग्नि में व्याकुल होकर मर जाएगी, हम कैसे देख पाएंगे ऐसे विरह में मरने वाली गोपियों को, हमने बचाना चाहिए उसको। तो क्या अगर राधा रानी भी चिंतित है कैसे बचाए उसको, सब लोग उसके प्रेम से प्रभावित है। तो ललिता विशाखा के मन में, ललिता के मन में आइडिया आती है तुरंत, राधे अरे हमने कल ही तो चुराया था सब सामान कृष्ण भगवान का, याद है ना आपके पास ही रखा है, क्यों ना हम आपको श्याम सुंदर बनाएं, हम आपका मेकअप करेंगे पूरा, आप मुरली धारण करना, पीतांबर पहनना, सारे उसके अलंकार पहनना, मोर पंख धारण करना और बंसी लेकर खड़े हो जाना, और फिर हम उसको बोलेंगे देखो श्याम सुंदर जी आए हैं, फिर शायद वो जग सकती है, उम्मीद है कि मे बी शी विल वेक अप। तुरंत फिर कुछ लोग सखी बैठे हवा देते हुए पानी देते हुए चिंतन कर रहे हैं, विष्णु का नाम ले रहे हैं कि इसको बचाओ बचाओ बचाओ, और कुछ सखियां तुरंत भाग देते हैं अंदर और सारे अलंकार जो है राधा रानी का श्रृंगार करने में व्यस्त हो जाते हैं। और बहुत देर के बाद श्रृंगार करने के बाद में राधा रानी बाहर आती है, उसको शाम का रंग बना दिया पूरा पेंट करके फर्स्ट क्लास मेकअप कर दिया है, ऐसे त्रिभंग रूप में खड़े हो जाती है और सखियां कहते देखो श्याम सुंदर जी आए हैं, देखो देखो जगो जगो श्याम सुंदर जी आए हैं, ऐसे कई बार बोलते हैं तो अचानक वो श्यामा सखी जो है वो झूम के ऐसे कूद जाती है पूरे और पूरा अपना जो घूंघट है उसको फेंक देती है, बोलते देखो पकड़ा ना तुमको रंगे हाथ पकड़ा तुमको, अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, सारे गहने चुराती हो, सबको उतारो मेरे सामने अभी उतारो, सारा गहना उतार देते हैं, बिल्कुल शर्मिंदा होकर सब गोपियां भी हैरान हो जाती है, अरे उनको लगा था तो गोपी है ये तो श्याम सुंदर निकले, और इतना सबके सामने अकेले व्यक्ति ने हमको सबको कितना संकट में डाल दिया, ही हैज एम्बैरस्ड अस इन लार्ज क्राउड्स, शर्मिंदा होकर सब सखियां जिन्होंने श्रृंगार किया था राधा रानी का अपने हाथ से सारा श्रृंगार राधा रानी का उतारते हैं और कृष्ण को एकदम शर्मिंदा होकर हाथ में दे देते, फिर बड़े थाट से और ऐट से उनके सामने भगवान सब श्रृंगार पहन लेते, खुद खड़े हो जाते हैं, देखो ये मेरा पोजीशन है आपका नहीं है, फिर अपने घर चले जाते हैं, बोलते मैया देखो सारा वापस लेके आए, मैंने कहा था ना लेके आऊंगा, ऐसी सुंदर सुंदर लीला करने के लिए उन्होंने राक्षसों को दूर रखा था, मन आया आपको भी ऐसी कथा यहाँ की, एक यहां पर बहुत सुंदर नंदगांव के रास्ते पर एक सरोवर है उसका नाम है प्रेम विवल कुंड, जहां पर प्रेम में सखी सखियां और भगवान विवल हो जाते, ठीक है ना, तो वहां से एक बार यहां से राधा रानी आ रही थी, उनके हाथ में थाली थी पूजा की, मैया ने कहा था कि जाओ देवी की पूजा करो, वो थाली दीपक फूल सब लेकर चल रही थी वो, तो वहां से नंदगांव से अपने आ रहे हैं ठाकुर जी महाराज, अरे शिवानु नंदिनी कहाँ जा रही हो, नहीं माता ने कहा है देवी की पूजा कर, देवी को ढूंढ रही हूँ, देवी को ढूंढ रही हूँ, यही तो देवी है क्योंकि मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ, तुरंत बिचारी भोली भाली राधा रानी है भोली गोपी राधे राधे बिचारी तुरंत टर्न कर दिया उसने, वो चली गई उसके अंदर ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढा उसने बहुत ढूंढा कहीं देवी नहीं है, परेशान होकर लौट रही थी, तो भगवान फिर मिलते हैं उनको, हो गई देवी की पूजा, कहा देवी की पूजा देवी तो है ही नहीं उधर, अरे अभी भी जाके आया अभी दर्शन किया, दोबारा गई वो दोबारा पूरा ढूंढ के आई, किधर भी देवी नहीं, किधर देवी की मूर्ति नहीं मंदिर नहीं कुछ नहीं, फिर दोबारा परेशान होकर लौट के आती है, तो फिर मिल जाते ठाकुर जी हमारे, बोलते क्या हो गया पूजा किया देवी का, कहा देवी है आप बोल रहे देवी देवी है, बोला अभी लौट के आ रहा हूँ देख के दर्शन करके आ रहा हूँ, आपको कैसे नहीं मिल रही है, चाहो अभी आखिरी बार ट्राई करके आओ, तो ये आखिरी बार गई तो मिली देवी उनको, अरे इस जगह पर मैं 3-2 बार आ चुकी हूँ यहाँ देवी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं तो पीछे के बाद भूल जा देवी तो मिल गई ना अभी पूजा करनी चाहिए, देवी खड़ी है बहुत बढ़िया से आरती पूजा हो रही है, हाँ अचानक जो है ना देवी जो है ना वो आंख मिचती है, तो कितनी देर देवी ऐसे खड़ी रहेगी आंख को लेके, जैसे आंख मिचती है तो राधा रानी आरती कर रहे देवी आप देवी को फिर अपना पोस्चर जो है ना वो मेंटेन करने को बहुत डिफिकल्टी हो रही है, हंसी आ रही है बहुत, तो गौर से देखती है देवी को दीपक के प्रकाश में, अरे ये तो श्याम सुंदर है तो जैसे ही श्याम सुंदर को पहचानती है राधा रानी यही देवी बन के खड़े हैं, तो उनकी आंखों में से प्रेम से विवल होकर अश्रु निकलते हैं, बहुत प्रेम के मतलब आनंद के अश्रु निकलते हैं, और वो देखकर कृष्ण भगवान जो देवी बने उनकी भी आंखों से आंसू आते हैं, दोनों की आंखों से आंसू बन मिलकर एक बड़ा कुंड बन जाता है, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड, समझ सकते हैं आप, भाई हम लोग अगर रोते हैं समझो कोई मर गया हमारे घर पे, हम लोग एग्जाम में फेल हो गए समझो, या किसी को गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया तो कितना रोएंगे हम, एक ग्लास दो ग्लास और वो जो गिरते गिरते सूख जाएगा पूरा, वो इकट्ठा भी नहीं कर सकते हम, कितना इकट्ठा करेंगे ऐसा ग्लास भी नॉट पॉसिबल है ना, और उसके बाद में फिर रोते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, नहीं बोले आंसू भी सूख गए हमारे, बहुत लोग कविता लिखते हैं कि अब इतना रोए आपके लिए कि हमारे आंसू ही सूख गए, ये दुनियादारी की कविता है सब ऐसे ही बेकार की, तो ऐसा कोई रो सकता है क्या प्रेम से जिससे कुंड भर जाए हजारों लीटर का, तो ऐसी लीला यहां पर होती है प्रेम की लीला, यहां पर एक वन है जिसका अभी नाम पड़ा है प्रेम सरोवर वन, पहले तो एक राधा रानी का वन था, तो वहां पर कृष्ण भगवान जो है ना वैसे ऐसे कहते हैं कि जब तक राधा रानी उनके साथ में है तब तक भगवान का जो गौरव है वो देखने को मिलता है कि वो शक्तिमान है, सुंदर है, कला में निपुण है, नृत्य में निपुण है, बांसुरी बजाने में एकदम निपुण है और हर अनेक उनके षड ऐश्वर्य है, शक्तिशाली है, बलवान है, फेमस है, सब कुछ धनवान है, सब कुछ है उनका। लेकिन राधा रानी जब साथ में नहीं रहती है तो वो केवल रोते रहते हैं, सारे उनके ऐश्वर्य गुण नष्ट हो जाते हैं और केवल वो दुख में रोते रहते हैं। वैसे कहा गया कि राधा रानी जब साथ में होती है तो उनका जो पावर है ना वो प्रकट हो जाता है। और ऐसे भी कहा गया है कि इनका सौंदर्य जो है राधा और कृष्ण का वो अनलिमिटेड है। कैसा अनलिमिटेड है कि जब कृष्ण भगवान को राधा रानी देखती है तो उनको देखते समय प्रेम से राधा रानी का सौंदर्य बढ़ जाता है और जब वो सौंदर्य बढ़ते हुए राधा रानी को अपनी ओर देखते हुए कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है और जब वो बढ़ते हुए सौंदर्य को राधा रानी देखती है तो कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है, फिर वो बढ़ते हुए सौंदर्य को जब राधा रानी देखती है तो उनका सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इस तरह से दोनों के केवल एक दूसरे को देखने से उनका सौंदर्य अनलिमिटेड बढ़ते जाता है, उसमें कोई अंत नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू द ब्यूटी दैट दे हैव, जस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे ही एक बार नयन से नयन मिलाकर वो बैठे थे एक जगह पर और एक दूसरे को बहुत गहराई में निहार रहे थे प्रेम से और आंख भी नहीं मिच रही थी उनकी, इतने मग्न हो गए थे कि सखाओं का ध्यान नहीं, सखियों का ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं, केवल दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे हमारे दुनिया में भी होता है, कभी कविता करते हैं लोग कि मैं आपको देख रहा हूं और लगता है पलक ही ना झपके और युग युग बीतते जाए और मैं आपको देखते रहूं, लेकिन ये सब सच नहीं होता है। 10 मिनट बाद बोर हो जाता है, आंखें चेंज करो बोलते हैं, चेंज आईज, वी वांट टू हैव टू न्यू आईज, नाउ आई सीन द ब्लू आईज, नाउ आई वांट टू हैव ब्लैक आईज, नाउ आई वांट टू हैव ग्रे आईज। तो ये सब टेम्पररी, यहां का जो मामला है सब गड़बड़ है कंप्लीट। तो ये देख रहे हैं अपने चित्रों में, देख रहे हैं, आनंद खत्म ही नहीं हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, इतने मग्न होकर देख रहे हैं। तो बीच में भंवरा आता है, भंवरा करके दोनों के बीच में ऐसे आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं ए मधु, मतलब मधु मंगल जो उनका मित्र है जो आसपास में है, कहते हैं ए मधु, ये मधु को हटा देना, मतलब जो भृंग है, जो भंवरा है उसको मधु कहा जाता है ना, मधु, क्योंकि वो मधु के पीछे, फूलों के पीछे भागते रहता है, इसलिए इसका नाम भी मधु है, मधुकर कहते हैं उसको, मधुकर। तो अपना फ्रेंड जो है उसका शॉर्टकट नेम बताया मधु, हे मधु इस मधु को भगा देना, और कृष्ण का नाम भी मधु है क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस को मार दिया था मधुवन में, तो वो भी मधुर है, उसका भी नाम मधु है। थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है सब ये, थोड़ा तो समझने की कोशिश करना है इसको। तो जैसे राधा रानी सुनती है हे मधु मधु को भगा दो, तो मधु मंगल आता है और भंवरे को भगा देता है और कहता है मधु चला गया, अभी कोई चिंता नहीं है। तो राधा रानी सुनती है मधु चला गया, मतलब उनको लगता है कृष्ण चला गया है, तो आंखों के सामने, लेकिन जो सुनते हैं उस बात पर यकीन करते हैं कृष्ण चला गया और रोने लगती है वो, और कृष्ण सामने बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो सोच के ही विरह में गई कि कृष्ण चले गए और रोने लगी, और रोने से वो दृष्टि भी उजल हो गई और उनके रोते हुए देखकर, आप पता है ना आपकी औरतों का कैसा स्वभाव होता है, कोई भी रोएगा ना किसी भी कारण से तो साथ में औरतें वो भी रोती है, आपने देखा होगा ना सब जगह पे। आई मीन क्रिटिसाइजिंग यू, लेकिन ये सच है, कभी भी किसी भी औरत के सामने किसी भी कारण से, इतने पता भी नहीं कारण क्या है, कोई रोते हुए आया तो सबसे पहले औरत रोती है। तो जैसे ही भगवान हमारे रोते हुए राधा रानी को देखते हैं तो उनको भी रोना आता है, अरे मेरी प्रिय राधा रानी रो रही है, कुछ सहन नहीं होता है। यहाँ पर कृष्ण की बात करें, गोपियों की बात नहीं कर रहे, तो वो रोने लगते हैं, तो ये रो रही है, समझ रही है कि वो चले गए और उनको रोते हुए देखकर ये रो रहे हैं, दोनों रोते हैं और एक कुंड बनता है, सराम है प्रेम सरोवर, यानी कि 2-3 किलोमीटर पास में, बहुत उत्कट जगह है ये, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हम तो खाली आपको बता रहे हैं कथा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, थोड़ा बाय हार्ट किया है, लेकिन इसका भाव जो है पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है, यहां का प्रेम तो कितनी बंधन में बसा हुआ है, बुढ़ापे के साथ वो सुंदर सुंदर आंखें जो हमको पागल क्या करती थी, अभी देखिए बोर होता है उनको, यहां की सुंदरता है। राधारानी और कृष्ण भगवान एक दूसरे के नयन में देख रहे हैं तो उनको अनंत काल तक, वो युग युग तक देख सकते हैं, लेकिन उनकी तृष्णा जो है, प्यास जो है, वो पूरी नहीं हो सकती। ऐसे एक और सुंदर लीला बताता हूं आपको। जैसे हमारे कृष्ण भगवान है, सखा है उनकी, जितनी गोपियां प्रेम करती हैं वैसे सखा भी प्रेम करते हैं उनके ऊपर। दिन भर वो सखाओं के साथ में खेल खेलते हैं ना, गाय चराते हैं और गेंद खेलते हैं, पेड़ पे कूदते हैं, फल तोड़ते हैं, क्या क्या गुल्ली डंडा खेलते हैं, मजाक करते हैं, किसी का चोटी खींचते हैं, किसी का क्या करते हैं, सब कुछ खाना हुआ खाना छीन लेते हैं, छीना झपटी करते हैं, कभी मेंढक बनते हैं, कभी कुछ करते हैं, दिन भर बड़ा आनंद लेते हैं, वो छाक खाते हैं बीच में बैठकर जमुना किनारे, बहुत आनंद लेते हैं। एकदम संध्या होने लगती है ना तो सभी ग्वाल बाल व्याकुल होने लगते हैं, अभी दिन का संग जो है वो खत्म हो जाएगा, अभी ये लीला समाप्त हो जाएगी, हमको घर जाना होगा, फिर कल सवेरे तक इंतजार करना होगा। सब ग्वाल बाल रोते थे, दुखी हो जाते थे, लेकिन क्या करें। तो उसमें सबसे जो भगवान को प्रिय थे, कल मैंने आपको बताना भूल गया, नारद मुनि ने सुदामा को वरदान दिया था, जब दोबारा घर गए ना उनके, वो सुदामा को वरदान दिया कि तुम कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगे, राधा रानी के बड़े भाई। तो सुदामा जो थे वो बड़े विशेष समवयस्क सखा है भगवान के, भगवान पर इतना प्रेम करते हैं कि वो रात भर सोते नहीं है, केवल रोते रहते हैं उनकी याद में, कब मिलेंगे मेरे मित्र, कब सुबह होगी, कब सूरज आएगा, कब मैं जाऊंगा दोबारा सज धज के उनका दर्शन करने के लिए, उनके साथ में खेलने के लिए, रात भर सोता नहीं था वो। तो श्याम सुंदर को आकर बताते थे कि मुझे रात भर का वीर तुम्हारा सहन नहीं होता है, कुछ करो, मैं तुम्हें मर जाऊंगा, जिंदगी मेरी बचेगी नहीं। तो पहले तो मजाक मजाक में उसको ऐसे हंसी मजाक में छोड़ दिया, लेकिन बड़ा गंभीर मामला था, बहुत रोया सुदामा, नहीं है कुछ करो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, कुछ ना कुछ करो, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारा कोई चित्रपट बना दो, मुझे कोई फोटोग्राफ दे दो। तो उस समय तो फोटोग्राफी था नहीं, चित्र बनाना पड़ता था। तो ये गंभीरता देखकर फिर वो कन्हैया जी मैया के पास आए, मैया मेरा दोस्त जो है ना बहुत व्याकुल है मेरे लिए, वो कह रहा है कि चित्रपट बना दो, चित्रपट बना दो मेरा। तो यशोदा मैया भी थोड़ा सा लाइट मूड में थी, कहते आपका पेंटिंग बनाना है, आपका चित्र बनाना है, तो उसमें क्या मुश्किल है, एक कागज ले लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, दो तीन छींटे मार दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट। तो कन्हैया जी बड़े रोते हैं, मैया तुम मेरा मजाक कर रही हो, मैं काला हूं इसलिए, मेरा क्या दोष है इसके अंदर। तो कन्हैया को रोते हुए देखकर मैया भी थोड़ा सीरियस हो गई, नहीं भाई बालक जो है रो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझ गए कि मामला गंभीर है, इतना सीरियस मामला है कि परेशान है, और इतना परेशान कर मैं उसका मजाक कर रही हूँ, उसको बहुत दुख हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए बेटा बताओ। नहीं भैया, किसी भी तरह से मेरा चित्रपट बना दो, मैं मेरे सखा को चुनना चाहता हूँ। तुरंत यशोदा को याद आया, एक सखी है राधा रानी की, वो चित्रकार है बहुत, उसका नाम क्या है, चित्रलेखा, उसका गाँव कौन सा है, चिकसोली, चिकित्सापुर, बड़े विद्वान पिता की कन्या है वो, बड़ी विदुषी है, मतलब बहुत नॉलेजेबल है, उनके पिता भी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, पंडित है, और वो चित्रकला में बहुत एक्सपर्ट है। तो उसको याद करती है, बोली सखियों को भेजते जाओ, चित्रा सखी को बुलाओ। चित्रा सखी भगवान की यशोदा मैया बुला रही है, क्या भाग्य की बात है, यशोदा मैया ने हमें याद किया है, कुछ सेवा होगी हमारे लिए, भाग क्या दंडवत करती है, मैया बताओ क्या सेवा है। कहते हमारे कन्हैया का चित्रपट बनाना है, कोई बात नहीं मैं बनाऊंगी। बड़ी आनंद हो गया उसको कि हमारे लिए कुछ कृष्ण भगवान यशोदा मैया का जुड़कर कुछ सेवा मिला है, कितनी भाग्य की बात है। हम सबको भी भाग्यवान होना समझते हैं अपने आप को, जब हमें बरसाना धाम में सेवा मिली है, शुड थैंक कृष्णा एंड राधा मिलियंस ऑफ टाइम्स फॉर गिविंग अ सर्विस इन बरसाना धाम, एवरी मोमेंट, हर क्षण में हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इतना तो योग्य समझा कि आपके धाम में बुलाकर कुछ सेवा दिया हमारे लिए। सेवक की क्या महानता, सेवा दो सेवा, हनुमान जी कैसे थे, गिव अ सर्विस प्लीज, यही मेरे जीवन का धन है। भगवान ने कहा रामचंद्र ने, क्या दूं आपके लिए बताओ, आपने इतना पराक्रम किया मेरे लिए सीता जी को वापस लाने के लिए, बिना आपके सीता जी वापस नहीं आती थी, क्या चाहिए बताओ, सब कुछ दे सकता हूं आपको। तो क्या कहा, अपना दास बना के रखो, बस सेवा में रखो हमेशा, कोई नहीं मांगा, ना मुक्ति मांगी, ना वैकुंठ मांगा, ना लोक मांगा, ना सिद्धि मांगी, कुछ नहीं मांगा, भगवान सब कुछ देने को तैयार थे। गले लगाया उनको, बोला आप जैसा सेवक कहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो ये सेवा प्राप्त होती, इतनी कृतज्ञता से भाग गई अपने घर पे। अभी कैसा है ना, किसी का कोई चित्र बनाना होता है ना, समझो आपका चित्र बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां बैठ जाओ थोड़ा, इधर ही देखो, इसको ही देखना खाली, बस ऐसे रहो, फिर मैं चित्रपट निकालूंगा। अभी आप ऐसे 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 करोगे, हाथ दिखाओगे, तो मैं कैसे पेंटिंग करूंगा आपका? तो आपको एक जगह पर एक स्थिति में बैठना पड़ेगा ना। तो वो सोच रहे कि भगवान की कितनी छवियां हैं, हमने उनको नाचते हुए देखा है, हमने उनको गाते हुए देखा है, मुरली बजाते हुए देखा है, पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है, माखन चुराते हुए देखा है, और गैया चराते हुए देखा है, और कौन सी छवि पकड़ू मैं उसके लिए? एक कोई छवि निश्चित करना है ना, एक एक्शन, वन एक्शन वन मूड कोई पकड़ना चाहिए उसके लिए। तो फिर वो ऐसे बैठ जाती है कि चलो कोई एक छवि को ध्यान कर लेती हूँ। तो जैसे वो ध्यान में बैठती है तो उसके मन में हजारों करोड़ लाखों छवियां भगवान की आ जाती है, अलग 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 लीला करते हुए, अलग अलग भाव में। तो किसी भी एक छवि पर वो अपना मन केंद्रित नहीं कर सकती है कि अभी भी इस छवि को पकड़कर मैं इसको निकालूंगी, तो बहुत भ्रमित हो जाती है, क्या करूं क्या मैं? एकदम सोची सेवा इतनी अच्छी मिल रही है, लेकिन मैं उसको नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मैं किसी एक छवि पर मन केंद्रित नहीं कर पा रही हूं। व्हाट टू डू नाउ? तो अचानक उसको याद आती है, अरे मैंने इस सेवा करने के पहले राधा रानी की कृपा नहीं ली, उनकी अनुमति नहीं ली, उनकी परमिशन नहीं ली। क्या राज है इसके अंदर कि कोई भी सखी बिना राधा रानी के सैंक्शन, कृपा, आशीर्वाद से कोई सेवा नहीं करती, भले वो कृष्ण की कौन हो। उनकी कृपा के बिना कोई कृष्ण की सेवा सिद्ध नहीं होती है। हम कृष्ण की सेवा करने का कितना भी प्रयास करेंगे, उसको कृष्ण स्वीकार भी नहीं करेंगे जब तक राधा रानी उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। वो ऐसे खड़े ना, ऐसे कृष्ण भगवान ऐसे खड़े, और वो ऐसे हाथ में क्या है, हाथ में वो हम सबको हाथ में लेकर उनको अर्पण करना चाहते हैं। ये लोग ठाकुर जी ये बड़े अच्छे भक्त हैं, देखो इतनी सेवा कर रहे हैं आपके बरसाने में आके, इतने मेरे ब्रजवासियों की आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, हाँ ठंड को सहन कर रहे हैं, कभी गुनगुने पानी में स्नान करते हैं, कभी ठंडे में करते हैं, कभी लाइट जाती है, कभी पता नहीं क्या होता है, दिन रात 4 बजे ड्यूटी रिपोर्ट करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं आपके, जरा इन पर कृपा कर देना। जब वो कहती है ना, तब आपका सारा सेवा जो है वो उनके पास रिपोर्टिंग होता है, तब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और तब आपको प्रेम से देखते हैं भगवान। तो बिना राधा रानी की कृपा से कितना भी सेवा करेंगे ना, सब वेस्ट है, समझ में आया ना आपको? जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आपकी सेवा को कबूल नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक वो सारी सेवा जो है व्यर्थ है। इसे राधा रानी की कृपा बहुत जरूरी है, कृष्ण भगवान को संतुष्ट करना है तो। इसलिए हम लोग पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वो भाग कर राधा रानी के पास गई, उसके चरणों में गिरी, बोले हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी, हे करुणामयी, कृपा करके मुझे आशीर्वाद देना, मुझे कन्हैया जी का चित्रपट निकालने की सेवा मिली है। तो राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है, जैसे आशीर्वाद देती है तो एक सुंदर सी भगवान की छवि उसके मन में स्थिर हो जाती है, और कोई हजारों छवियां नहीं आ रही है। जैसे राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, एक सुंदर छवि चित्रा सखी के मन में स्थिर हो जाती है, फिर वो मन में बसे हुए छवि को निहारते हुए मन के चक्षु से सुंदर चित्रपट निकालती है, और वो चित्रपट लेकर भाग भाग के मंद भवन जाती है, यशोदा मैया को देती है। यशोदा मैया उसको श्याम सुंदर को देते हैं, और श्याम सुंदर जी अपने सखा को देते हैं, और सखा जी हमारे रात भर उसको निहारते रहते हैं। इसको कहते हैं चित्रपट लीला। हाँ, इसका पूरा ड्रामा मैंने यहाँ पर बरसाने में देखा था, बहुत सुंदर लीला। ऐसे अनंत लीलाएं हैं। हाँ, कभी भगवान चूड़ी बेचने वाले बनते हैं, उनको नंदगांव में बैठकर रहा नहीं जाता है, बहुत देर बैठ नहीं सकते वो। कभी चूड़ी बेचने वाले बन के आ जाते हैं, कभी ज्योतिष बन के आ जाते हैं हाथ देखने वाले, लेकिन राधा रानी का हाथ देखे बताते हैं तुम्हारा जो प्रेमी है ना वो बहुत नटखट है, बहुत चोरी करता है, बहुत बांसुरी बजाता है, बहुत शक्तिशाली है, सब बताते रहता है। फिर ब्रह्मचारी बन के आते हैं, कभी पुजारी बन के आते हैं, कभी योगी बनकर आते हैं, हाँ कभी फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, लेकिन हमेशा आते हैं तो कन्या बनकर आते हैं, याद रखना। लेकिन कुछ कुछ लीला ऐसी उनकी है, ब्रह्मचारी बनकर भी आते हैं, योगी बनकर भी आते हैं, कोई साधु बनकर भी आते हैं, और छुप छुप कर वो राधा रानी के महल में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते हैं। इतनी सारी अनोखी लीलाएं हैं, मटका फोड़ते हैं उनका, कुछ भैंस करके फोड़ते हैं, कभी प्रेम से फोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सुंदर सुंदर लीलाएं यहां पर हो सकती हैं क्योंकि यहां पर राधा रानी ने अपने प्रभाव से उस कंस को दूर रखा था। भगवान से अधिक शक्तिशाली क्यों है वो? भगवान के होते हुए कंस ने हिम्मत की किसी को भेजने की वहां पर, और भगवान ने उसको मार डाला। भगवान को कुछ ना कुछ करना पड़ा उनको मारने के लिए, लेकिन राधा रानी का इतना प्रभाव था, राधा रानी के प्रभाव से कोई राक्षस आया ही नहीं वहां पर। इसलिए कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली राधा रानी है, वो कृष्ण स्वामिनी है, वो कृष्ण को नियंत्रित करती है। भले अपने पावर से कृष्ण भगवान सारी दुनिया को, सारे निर्माण को, सृजन को, क्रिएशन को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन उस कृष्ण को राधा रानी केवल अपने नैनों के नजरों से कंट्रोल में रखते हैं, नचाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उस राधा रानी को पसंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। शास्त्र कहता है कि समसिद्धिर हरितोषणम, जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम जन्म जन्मांतर तक कोशिश करते रहेंगे अपने आप ही, फिर भी कृष्ण भगवान को संतुष्ट नहीं करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी, तपी, ध्यानी हजारों जन्म तक तपस्या करते रहते लेकिन उनको प्रसन्न नहीं कर पाते, उनके नाखून के किरण भी दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी को प्रसन्न करते ही तुरंत आपकी ओर भगवान मुड़ के देखेंगे, आप पर कृपा करेंगे। तो सब लोग राधा रानी की प्रार्थना करना। हाँ, और यहाँ पर आएंगे कितना भी थकेंगे दिन भर सेवा करके, जब पुकारने का समय आएगा तो आलस्य मत करना, पुकारना प्रेम से। हाँ, पुकारने की भूमि है ये, सब लोग आके पुकारते हैं, स्वयं कृष्ण भी आके पुकारते हैं, याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, चरणों में गिरते हैं, आंसू बहाते हैं, हे स्वामिनी कृपा करो, हाँ राधे किशोरी दया करो, ऐसे पुकारते हैं। बोलो श्रीमती राधा रानी की, बरसाना धाम की जय, जय श्री राधे। श्याम, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे अभी।